हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर सिंह राठौर ने ज़ोया के लिए उस अस्पताल नुमा घर में ही एक जिम खोल दिया था। अबीर सिंह राठौर ने ये निर्णय लिया था कि वो ज़ोया को शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, एकदम लोहे की तरह, ताकि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। इसीलिए अबीर सिंह राठौर ने दो विदेशी तंदुरुस्त महिलाओं को ज़ोया का कोच नियुक्त कर दिया था। जब से अबीर ने ज़ोया की हालत के बारे में सुना था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि ज़ोया शारीरिक रूप से कितनी कमज़ोर है, तब से अबीर ने सोच लिया था कि वो ज़ोया को इतना मजबूत बनाएगा कि वो अकेले ही 20 से 25 हठी लड़कों का मुकाबला कर पाएगी। आज से ज़ोया की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। पहले दिन कुछ पुशअप्स, रनिंग ये सब कराया गया था, जिससे ज़ोया की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन अबीर बार बार उसके अंदर जोश भरता रहता था। जब भी ज़ोया हार मानने की कोशिश करती, अबीर उसके साथ हुई दुर्घटना को उसे याद दिलाता था और कहता था, तुम्हें अपने अपराधियों से बदला लेना है, इसके लिए तुम्हें मजबूत होना ही होगा, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती हो, याद करो तुम्हारा क्या हाल किया था उन लोगों ने, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें उन्हें सूद समेत वापस करना है जो कुछ भी उन्होंने तुम्हें दिया था। जब जब ज़ोया अबीर सिंह राठौड़ की प्रेरणादायक बातें सुनती थी, उसके अंदर एक हिम्मत का जन्म होता था और वो और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करती थी। ज़ोया का पूरा दिन कड़ी मेहनत करते हुए बीत गया था। बीच बीच में अबीर ने उसे फल और कुछ प्रोटीन शेक भी दिए थे। उसके बाद अबीर ने ज़ोया को आराम करने के लिए भेज दिया था। पहले दिन अबीर ने उन महिला कोचों के द्वारा ज़ोया से केवल 3 से 4 घंटे ही व्यायाम करवाया था, वो भी रुक रुक कर, ताकि उसे ज्यादा जोर न पड़े। लेकिन ज़ोया की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि ज़ोया एक कमज़ोर नाजुक सी लड़की थी और अचानक से उस पर इतना ज्यादा भार आ पड़ा था कि उसका पूरा शरीर दर्द से टूटने लगा था। ज़ोया इतनी थक गई थी कि वो अबीर के कमरे में जाकर बिना कपड़े बदले ही सो गई थी। जैसे ही अबीर कमरे में आया और उसकी नज़र ज़ोया पर पड़ी, तो वो कुछ पल के लिए उसे देखता रहा था, क्योंकि ज़ोया की थकावट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अबीर बड़े ही प्यार से उसके पास बैठा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, बहुत दर्द में हो, लेकिन ये तकलीफ, ये दर्द कुछ भी नहीं है जो तुमने अपनी ज़िंदगी में झेला है। बस उस दर्द से उबारने के लिए मैं तुम्हें ये दर्द दे रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अबीर बड़े ही प्यार से ज़ोया के सर पर हाथ फेर रहा था और तभी उसे याद आया कि ज़ोया ने कुछ भी नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खाया था, वो केवल प्रोटीन शेक और फल ही खा रही थी। तभी अबीर ने कुछ सोचकर ज़ोया को गोद में उठा लिया। जैसे ही अबीर ने ज़ोया को गोद में उठाया, ज़ोया की आंख खुल गई और उसने कहा, क्या हुआ अबीर सर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ज़ोया की बात सुनकर अबीर ने उसे कहा, शायद आप भूल रही हैं, आप बिना कपड़े बदले सो रही थीं और आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी गंदे कपड़ों में मेरे आसपास रहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप ऐसे गंदे कपड़ों में मेरे बिस्तर पर सो गईं, अबीर ने ज़ोया पर तंज करते हुए कहा। अबीर की बात सुनकर ज़ोया भी गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा, एक तो आपने मुझे उन भारी भारी बड़े बड़े शरीर वाली औरतों के सामने भेज दिया जिन्होंने पता है मुझे कितना दौड़ाया, कितना वर्कआउट करवाया, यहाँ तक कि मेरे हाथ भी दर्द करने लगे हैं, मेरा सारा शरीर थक गया है, और आपको कपड़ों की फिक्र है कि मैंने कपड़े नहीं बदले, ज़ोया ने भी गुस्से से अबीर की ओर देखते हुए कहा। तब अबीर ने कहा, मैंने जो कहा है वो तुम्हें करना ही होगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, समझी, तुम चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर अबीर ज़ोया को सीधा बाथरूम में ले गया, क्योंकि उसने कुछ केमिकल्स डालकर हल्का गर्म पानी बाथटब में पहले ही भर रखा था और उसने ज़ोया को कपड़ों समेत उस टब में लेटा दिया। ज़ोया की एक चीख निकल गई और वो अबीर से कहने लगी, कितने बुरे हो तुम, कम से कम मुझे कपड़े बदलने का मौका तो दिया होता, ऐसे ही मुझे इस टब में फेंक दिया। ज़ोया की बात सुनकर अबीर मुस्कराने लगा और बोला, अगर अब तुम बोलते हुए चुप नहीं हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ इसी टब में कूद पड़ूंगा और नहाऊंगा। अबीर की बात सुनकर ज़ोया ने एकदम से कहा, नहीं नहीं, मैं नहा लूंगी, आप जाएं यहाँ से, बाहर जाएं और दरवाज़ा लॉक कर दीजिए। ज़ोया की बात सुनकर अबीर मुस्कुराने लगा और कमरे से बाहर आ गया। अबीर जानबूझकर ज़ोया पर तंज कसता था ताकि वो उसे इसी लहजे में जवाब दे। ज़ोया का इस तरह से उससे बात करना अबीर को बहुत पसंद आता था। अबीर सिंह राठौड़ जानबूझकर जोया के सामने ऐसी तंज भरी बातें किया करता था ताकि जोया उसे उल्टा जवाब दे और बाहरी दुनिया में भी वो लोगों को इसी तरह से जवाब दे सके। इस तरह की बातें करके अबीर जोया के अंदर की सारी झिझक और डर निकाल देना चाहता था और अबीर को खुद भी मज़ा आता था जोया से इस तरह से बात करने में, क्योंकि आज तक कोई भी अबीर के सामने नहीं बोला था और जोया का इस तरह से बोलना अबीर को बहुत पसंद था। वहीं दूसरी ओर ठाकुर मेंशन में पहुंचकर अरमान और मेहर ने गुस्से से घर की सभी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आज राजवीर के हाथों मजबूर होकर मेहर ने उसे तलाक दे दिया था, जबकि अरमान ने तो तलाक को लेकर कई योजनाएं बना ली थीं, लेकिन अब उसके सारे प्लान बिगड़ते नजर आ रहे थे। कुछ देर तोड़फोड़ करने के बाद वे दोनों शांति से एक जगह बैठ गए। तब मेहर ने अरमान से कहा, आप फिक्र मत कीजिए भाई, अब आप देखिए आपकी बहन राजवीर सिंघानिया का क्या हाल करती है। कुछ सोचकर मेहर अपने कमरे में चली गई, जबकि अरमान अरहम ठाकुर को फोन करने के लिए अपना फोन निकाल लेता है, क्योंकि कई दिनों से उसकी अरहम ठाकुर से कोई बात नहीं हुई थी। वो जानना चाहता था कि और कितना समय लगेगा, क्योंकि अरमान को भारत वापस आए 2 महीने हो चुके थे, अब सिर्फ 4 महीने बाकी थे। इन 4 महीनों का इंतजार उसे नहीं हो रहा था। अरमान को रह रहकर जोया की याद आ रही थी। जोया के लिए एक पल भी सांस लेना उसे बहुत मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि उसे जोया की आदत हो चुकी थी और बाथरूम में जोया के साथ उसने जो पल बिताया था वो आज तक उसे नहीं भूल पाया था। वो पल उस मजबूत आदमी को बहुत परेशान कर रहा था। दिन पर दिन अरमान के दिलो दिमाग में जोया के नाम का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। अरमान ठाकुर को जोया का डरा सहमा सा चेहरा बहुत पसंद आता था। जोया को देखकर अरमान को एहसास होता था कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत जोया पर आजमाता था और जोया की आंखों का डर उसे अंदर ही अंदर सुकून पहुंचा देता था। लेकिन अरमान को सपनों में भी अंदाज़ा नहीं था कि अब वो जिस नई जोया से मिलने वाला था वो जोया उसके किस तरह से छक्के छुड़ाएगी, ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। अरमान ने तो जोया की अपनी एक अलग ही छवि बना रखी थी कि जोया डरी सहमी सी रहती थी, अरमान जिस तरह से चाहे जिस तरह से नचाएगा जोया वैसा ही करेगी और अरमान उसके खूबसूरत शरीर का जब तक चाहेगा तब तक इस्तेमाल करेगा और जोया उसे नहीं रोक पाएगी। अरमान ने आज तक किसी और औरत को नहीं छुआ था। अनुराधा ने भी अरमान के साथ जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना रिश्ता बनाया था, लेकिन इसीलिए अरमान ने अनुराधा का खून कर दिया था, क्योंकि जोया के शरीर की खुशबू वो आज तक नहीं भूल पाया था। इसीलिए वो आज भी जोया के इंतजार में था और पल पल उसके आने का इंतजार कर रहा था। एक एक पल उसका बहुत मुश्किल से कट रहा था। अरमान के लिए जोया एक तरह से उसकी दवा थी।
जिस तरह से अरमान आज राजवीर से गुस्सा होकर आया था और उसे अपना गुस्सा घर की बेजान पड़ी चीज़ों पर निकालना पड़ा था, वो अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं था। अरमान को गुस्से में, खुशी में, गम में हर जगह सिर्फ और सिर्फ जोया के साथ रहना अच्छा लगता था। गुस्से में वो जोया के साथ मारपीट और ज़बरदस्ती किया करता था, खुशी में भी वो जोया के साथ ज़बरदस्ती किया करता था। हर हाल में उसे अपनी खुशी दुख सब कुछ जोया के साथ ही करना पसंद था। गुस्से में अरमान ने सोच लिया था कि जब तक जोया नहीं आ जाती तब तक उसके पास राजवीर है, वो इतने राजवीर के साथ खेलेगा। कुछ सोचकर वो राजवीर के खिलाफ कुछ प्लान तैयार करने लगा था। वहीं राजवीर जैसे ही अपने होटल के कमरे से बाहर निकला और उसकी नज़र सीधा चांदनी पर पड़ गई। चांदनी को देखकर राजवीर का दिल उछलने लगा, क्योंकि जब उसने चांदनी को बचाया था तब उसके शरीर को देखकर एक बार उसके दिल में भी उसे पाने की चाहत हुई थी, लेकिन उस वक्त उसने शराफत का नकाब ओढ़ रखा था। लेकिन आज चांदनी को देखकर उसके दिल में फिर से तितलियां उड़ने लगी थीं, क्योंकि चांदनी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और वो काफी स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थी। लेकिन फर्क इतना था कि उसके पूरे कपड़े ढके हुए थे। पहले जो वो कपड़े पहना करती थीं वो काफी छोटे और खुले कपड़े पहना करती थी, लेकिन आज जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो पूरे कपड़े थे। वहां से उसके शरीर का कोई भी भाग नहीं दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ वो कपड़े काफी मॉडर्न लग रहे थे और चांदनी उनमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही राजवीर ने चांदनी को देखा वो देर तक उसे देखता रहा और फिर मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा।